राधा स्वामी सत्संग ब्यास की पुस्तक हक हलाल की कमाई की ऑडियो रिकॉर्डिंग ऑडियो कॉपीराइट 2022 राधा स्वामी सत्संग ब्यास प्रकाशक डी के सीकरी सेक्रेटरी राधा स्वामी सत्संग ब्यास डेरा बाबा जैमल सिंह पंजाब कॉपीराइट 1981-2009 राधा स्वामी सत्संग ब्यास सर्वाधिकार सुरक्षित पहला संस्करण 1981 21वां संस्करण 2009 दो शब्द संतमत आध्यात्मिक उन्नति का व्यवहारिक मार्ग है। इस मार्ग में निर्मल और पवित्र रहनी सात्विक आहार तथा ऊंचे पवित्र विचारों का बहुत महत्व है, क्योंकि सदाचार और नैतिकता की सुदृढ़ नींव पर ही रूहानी तरक्की और नाम के अभ्यास के मजबूत किले का निर्माण किया जा सकता है। नेक कमाई का प्रभाव आहार विचार तथा आचरण तीनों पर पड़ता है, इसलिए संत महात्माओं ने नेक कमाई अथवा हक हलाल की कमाई को प्रभु प्राप्ति के मार्ग में अग्रसर होने के लिए एक आवश्यक आधार माना है। संतों ने स्वयं अपने जीवन में इस सिद्धांत का दृढ़तापूर्वक पालन किया है तथा अपने शिष्यों को नेक कमाई पर गुजारा करने के लिए निरंतर सावधान करते रहे हैं। आशा है कि जिज्ञासुओं तथा सत्संगियों को संत महात्माओं के हक हलाल की कमाई के उपदेश पर विचार करने तथा उसके अनुसार अपना जीवन ढालने की प्रेरणा मिलेगी। सेवा सिंह सेक्रेटरी राधा स्वामी सत्संग ब्यास डेरा बाबा जैमल सिंह जिला अमृतसर पंजाब जनवरी 1994
हक हलाल की कमाई। संत मत कथनी का नहीं करनी का मार्ग है। यह अध्यात्म के उच्च और पवित्र सिद्धांतों को अमली जामा पहनाने और उन्हें अपने जीवन में व्यवहारिक रूप में उतारने पर जोर देता है। संत महात्माओं ने नेक कमाई की महिमा की है और इस बात पर जोर दिया है कि परमार्थ के एक सच्चे साधक के लिए अपनी निजी कमाई दशा नुहा की कमाई अर्थात अपनी मेहनत की कमाई अथवा हक हलाल की कमाई अर्थात अपनी मेहनत और ईमानदारी से कमाया धन बहुत जरूरी है। कहावत है, जैसा खावे अन्न वैसा होवे मन। अनुचित रूप से कमाए हुए धन से प्राप्त आहार या भोजन अनुचित विचारों और अनुचित वृत्तियों को जन्म देता है। ऐसा आहार मन को निकृष्ट विचारों तथा संकल्पों का अखाड़ा बना देता है, जिसके फलस्वरूप परमार्थ में उन्नति करना असंभव हो जाता है। अपनी मेहनत की कमाई को त्याग कर अपना बोझ दूसरों पर डाल देने वाले, पूजा के धन चढ़ावे और भेंट पर पलने वाले और चोरी ठगी बेईमानी धोखे छल आदि द्वारा पराया धन हथियाने वाले लोग परमार्थ में उन्नति नहीं कर सकते। चाहे ऐसे लोग अपने आप को बहुत बुद्धिमान सयाने या चतुर समझें, पर असल में वे अपने आप को ही धोखा दे रहे हैं। इसीलिए संत महात्माओं ने नेक कमाई पर जोर दिया है। वे कहते हैं कि मन और आत्मा की गांठ बंधी हुई है, जिसे जड़ चेतन की गांठ कहा जाता है। मन की प्रवृत्ति चंचल है, वह पल भर के लिए भी स्थिर या निश्चल नहीं रहता, और जब तक मन साथ ना दे आत्मा अंतर में चढ़ाई करने में सफल नहीं हो सकती। हक हलाल की कमाई पर गुजारा करने से मन की चंचलता को कम करने तथा उसका झुकाव अंदर की ओर करने में सहायता मिलती है, जिससे अभ्यासी के लिए आध्यात्मिक यात्रा तय करना सहज हो जाता है। आध्यात्मिक उन्नति का बीज केवल मेहनत के सच्चे और पवित्र खेत में ही अंकुरित हो सकता है। सच्चे परमार्थ में भीख बेईमानी और धोखे द्वारा कमाए हुए धन के लिए कोई स्थान नहीं है। जब कोई रोगी इलाज के लिए डॉक्टर के पास जाता है तो डॉक्टर उसके रोग की पहचान करके उसे दवाई देता है, साथ ही वह रोगी को दो बातें ध्यान में रखने की हिदायत देता है। एक तो यह है कि दवाई समय पर ली जाए और दूसरी यह है कि बताए गए परहेज की पालना जरूर की जाए। रूहानियत के क्षेत्र में संत सद्गुरु अज्ञानता से पीड़ित संसारियों के लिए डॉक्टर या वैद्य बनकर आते हैं। वह उन्हें नाम की दवाई देते हैं और उसके नियम पूर्वक सेवन की ताकीद करते हैं। साथ ही वह उन्हें कुछ जरूरी परहेज भी बताते हैं, जिनमें से एक यह है कि वे पराया हक छीनने या छल कपट से धन कमाने से बचें और हक हलाल की कमाई पर गुजारा करें। संत महात्माओं ने अपने उपदेश में स्पष्ट और जोरदार शब्दों में हक हलाल की कमाई पर बल दिया है। परमात्मा के भक्तों ने स्वयं नेक रहने तथा हक हलाल की कमाई की जिंदा मिसाल बनकर परमार्थ के साधकों को जीवन में अधिक से अधिक पवित्रता अपनाने की प्रेरणा दी है। हक हलाल की कमाई से महात्माओं का तात्पर्य उस धन से है जो सच्चाई और नेकी के द्वारा कमाया गया हो, जिस पर न्याय, कानून और नैतिक दृष्टि से उपभोग करने वाले का हक या अधिकार हो, जिसे कमाने में देश और समाज के नियमों तथा मानवता का हनन ना किया गया हो, जिसे प्राप्त करने के लिए किसी का नुकसान ना किया गया हो तथा जिसमें से परिवार तथा अन्य भागीदारों को उनका हिस्सा न्यायपूर्वक दे दिया गया हो। सुकृत। सच्ची और नेक कमाई, सात्विक आहार, शुभ विचार, नेक आचरण, मालिक के प्रेमियों की संगत और नाम का अभ्यास संतमत की प्रमुख आवश्यकताएं हैं। शब्द अथवा नाम की कमाई आहार, विचार और आचार की पवित्रता के सहारे ही हो सकती है। संतों ने इस विषय की विस्तार पूर्वक व्याख्या की है। संत नामदेव ने सुकृत अर्थात अच्छे नैतिक कर्मों द्वारा की गई कमाई से गुजारा करने को बहुत महत्व दिया है। ऐसी नेक कमाई की महिमा बताते हुए आप कहते हैं कि इससे मनुष्य सुमत अर्थात अच्छी निर्मल बुद्धि वाला होकर गुरमत में रहकर नाम का अभ्यास करने के योग्य हो जाता है और इस प्रकार वह परम धाम प्राप्त कर सकता है।
पनत नामदेव सुकृत सुमत पे गुरमत राम कह को ना बैकुंठ गए।
संत नामदेव खुद भी पूरी जिंदगी छीपे और दर्जी का कार्य करते हुए अपनी ईमानदारी की कमाई पर गुजारा करते रहे। गुरु अंगद देव जी ने भी सभी वर्गों के लोगों के लिए नेक कमाई के नियम पर जोर दिया है। आपने भी सुकृत को धर्म का अर्थात अध्यात्म में उन्नति का आधार बताया है।
कर सुकृत धर्म कमाया।
हर समय की तरह गुरु नानक देव जी के समय में भी एक तरफ राजा, हाकिम और अधिकारी, दूसरी तरफ पंडित, पुरोहित, मुल्ला तथा काजी और तीसरी तरफ व्यापारी और धनी लोग मेहनत की नेक कमाई से दूर जा रहे थे। आम लोगों की रहनी में भी सच्चाई और ईमानदारी का अभाव होता जा रहा था। गुरु साहिब का धर्म को सुकृत के साथ जोड़ना बेकार बैठे लोगों, दूसरों की कमाई पर ऐश करने वालों और ठगी बेईमानी करने वालों के लिए एक गंभीर चेतावनी था और आज भी है। धार्मिक नेता पराया धन लेने में, काजी और हाकिम रिश्वत लेने में पाप नहीं समझते थे। गुरु नानक साहिब फरमाते हैं कि तस्बीह यानी माला फेरने वाले और खुदा खुदा करने वाले लोग जब इंसाफ की कुर्सी पर बैठते हैं तो रिश्वत खाकर दूसरों के हक या अधिकारों को छीन लेते हैं। यदि उनसे कुछ कहा जाए तो वह धर्म पुस्तकों का हवाला देकर अपने आप को ठीक साबित करने का प्रयत्न करते हैं।
काजी होए कै बह न्याय, फेरे तस्बीह करे खुदाए, वड्डी लैकै हक गवाए, जे को पुछे तब पढ़ सुनाए।
गुरु साहिब फरमाते हैं कि लोगों के गलों पर छुरी चलाने वाले पुरोहित आदि अपने गले में जनेहू पहनकर अपनी पवित्रता का दिखावा करते हैं। हर तरफ झूठ और छल प्रधान है। सच्चाई, ईमानदारी और धर्म पंख लगाकर उड़ गए हैं। अपने आप को धर्मात्मा कहने वाले पुरोहित लोग बेईमानी और अन्याय के द्वारा धन कमाने वाले लोगों के घरों में जाकर पूजा आदि करवाकर पुराणों में से कथाएं सुनाकर पाप की कमाई का अन्न खाते हैं।
मानस खाने करा निवाज, छुरी वगायन तिन गल ताग, तिन कर ब्राह्मण पूरा नाद, ओना भी आवे ओई साध, कूड़ी रास कूड़ा व्यापार, कूड़ बोल करे आहार, शरम तरम का डेरा दूर, नानक कूड़ रहा परपूर, मत्था टिका तेड़ तोती कखाई, हाथ चुरी जगत का साई, नील वस्त्र पहर होवे परवान, मलेच तान ले पूजे पुराण।
गुरु साहिब फरमाते हैं कि लोग अनेक प्रकार की चोरी, ठगी, दुराचार और झूठ के पाप का भार अपने ऊपर लादे जा रहे हैं।
लख चोरियां लख जारियां, लख कूड़ियां लख गाल, लख ठगियां पहनामियां, रात दिनस जी नाल।
घाल खाए किछ हत्थों दे। गुरु नानक साहिब ने राजा, प्रजा, पंडित, मूर्ख, विद्वान, अनपढ़, हिंदू और मुसलमान सभी के लिए सुकृत अथवा नेक कमाई के नियम पर जोर दिया। इस प्रकार आप सच्चे धर्म को मंदिरों, मस्जिदों, ठाकुर द्वारों, गिरजाघरों आदि की चार दीवारी से निकालकर खेतों, दुकानों, कचहरियों, दफ्तरों यानी मनुष्य के दैनिक जीवन में ले आए। आपने केवल उन्हीं लोगों को धार्मिक क्रिया और रूहानी अभ्यास के योग्य माना जो हक हलाल की कमाई पर गुजारा करते हैं। गुरु नानक देव जी ने स्वयं वर्षों तक दौलत खां लोदी के मोदी खाने में सच्चाई तथा पूरी ईमानदारी के साथ काम किया और इस कमाई में से खुले दिल से गरीबों, अनाथों की मदद की। बाद में आपने करतारपुर में खेती की और अपनी नेक कमाई पर गुजारा करते हुए जरूरतमंदों की सहायता भी की। आपने स्वयं एक सच्चे परमार्थी का जीवंत उदाहरण स्थापित किया ताकि आपके उपदेश के इस मूल पहलू नेक कमाई के विषय में किसी प्रकार का कोई भ्रम ना रह जाए। आपने अपनी वाणी में बहुत स्पष्ट और सरल शब्दों में गुरुओं, पीरों तथा शिष्यों के लिए निजी कमाई तथा अपनी सच्ची और पवित्र कमाई पर निर्वाह करते हुए उसमें से जरूरतमंदों की सहायता करने का आदर्श स्थापित किया है।
गुरपीर सदाए मंगण जाए, ताके मूल न लगिए पाए, काल खाए किछ हत्थों दे, नानक राह पछाणे से।
अर्थात अगर कोई गुरु या पीर होकर शिष्यों से मांगता फिरता है तो उसके पैरों पर कभी सिर नहीं झुकाना चाहिए। जो मेहनत करके अपनी रोजी कमाता हो और उस हक हलाल की कमाई में से सात संगत की सेवा करता हो वही परमार्थ की राह का सच्चा जानकार, सच्चा गुरु हो सकता है। यह सबको पता है कि गुरु नानक साहिब ने अहमदाबाद में मलिक भागो के 36 प्रकार के पकवानों को त्याग कर भाई लालो की कोधरे की रोटी को पसंद किया, क्योंकि आपको पहले प्रकार के भोजन में गरीब लोगों का खून मिला हुआ दिखाई दिया तथा दूसरे प्रकार के भोजन में हक हलाल की कमाई का अमृत। कबीर साहिब ने अपने समय के अधूरे और पाखंडी गुरुओं की आलोचना करते हुए लिखा है कि वे लोभवश शिष्यों को लूटते हैं, उनके शिष्य भी अपने स्वार्थ के लिए ही ऐसे गुरुओं के साथ लगे रहते हैं, ऐसे लोगों को शांति कैसे मिल सकती है। आप कहते हैं कि ऐसे गुरु पैसे के 50 मिलते हैं, वे राम नाम को बेचकर उसे अपनी कमाई का साधन बनाते हैं और ऐसे धन से शिष्यों की गिनती बढ़ाने का यत्न करते हैं।
कबीर पूरे गुरु बिना पूरा शिष्य न होए, गुरु लोभी शिष्य लालची दूनी दाजन होए, गुरुआ तो सस्ता भया पैसा केर 50, राम नाम को बेच के करे शिष्य की आस।
कबीर साहिब ने गुरु तथा शिष्य दोनों के लिए बहुत ऊंचा आदर्श स्थापित किया है। आप फरमाते हैं कि शिष्य को चाहिए कि वह अपना सब कुछ गुरु को अर्पण कर दे, अर्थात सब कुछ गुरु का समझकर इस्तेमाल करे, परंतु गुरु को चाहिए कि शिष्य की सुई तक को हाथ ना लगाए।
शिष्य तो ऐसा चाहिए गुरु को सब कछु दे, गुरु तो ऐसा चाहिए शिष्य से कछु न ले।
कबीर साहिब स्पष्ट कहते हैं कि महात्मा अपने शिष्यों का धन सात संगत की सेवा या परोपकार में अवश्य खर्च करवा देते हैं ताकि उनकी कमाई सार्थक हो तथा परमार्थ की राह पर चलने में सहायक सिद्ध हो, परंतु शिष्यों से महात्मा निजी जरूरतों या निजी लाभ के लिए कभी एक पाई भी नहीं लेते।
मर जाऊं मांगू नहीं अपने तन के काज, परमार्थ के कारने मोहे न आवे लाज।
जैसा कि सब जानते हैं, कबीर साहिब ने जीवन भर कपड़ा बुनने का काम करके अपना और अपने परिवार का पालन किया। आप जब भी संतमत के प्रचार या सत्संग के लिए बाहर जाते अपना करगा साथ ले जाते थे। हुजूर स्वामी जी महाराज फरमाते हैं कि संत सद्गुरुओं के पास नाम भक्ति का अखूट भंडार होता है। वे दुनियावी धन दौलत की ओर नजर उठाकर भी नहीं देखते। वे अपने शिष्यों से अपने गुजारे के लिए कभी कुछ नहीं लेते। हाँ, परमार्थ के लिए अपने शिष्यों से परोपकार जरूर करवाते हैं।
गुरु नहीं भूखा तेरे धन का, उन पर धन है भक्ति नाम का, पर तेरा उपकार करावे, भूखे प्यासे को दिलवावे।
आपका अपना जीवन हक हलाल की कमाई का एक प्रेरणादायक उदाहरण है। छोटी उम्र से ही आपका परमात्मा की ओर झुकाव था, इसलिए आप ऐसी नौकरी चाहते थे जिसमें स्वार्थ और परमार्थ दोनों साथ साथ चल सके। आपने बल्लभगढ़ के राजा के पास फारसी के अध्यापक के रूप में नौकरी की, जिसमें 3 घंटे प्रतिदिन लगाने पड़ते थे। उन दिनों राजाओं के कर्मचारियों को वेतन के साथ गुजारे के लिए रसद भी मिला करती थी। स्वामी जी महाराज सारी रसद जरूरतमंदों में बांट दिया करते थे और वेतन का काफी बड़ा हिस्सा अपने पिताजी को भेज देते थे। रोजी कमाते हुए भी आपके मन में पूर्ण वैराग्य था। स्वामी जी महाराज के पिताजी घर के गुजारे के लिए साहूकारी किया करते थे। पिताजी के देहांत के बाद स्वामी जी ने सभी कर्जदारों को बुलाकर कहा कि जो कोई कर्ज की मूल रकम चुकाना चाहे चुका दे और जो ना लौटाना चाहे वे ना लौटाए। उन्होंने कर्जदारों के सामने कर्जे के सारे कागज पत्र फाड़ दिए और सूद की आमदनी सदा के लिए बंद कर दी। पापा बाजो होवे नाही। संत महात्मा कहते हैं कि धन दौलत पापों के बिना इकट्ठी नहीं होती और अंत समय साथ नहीं जाती। गुरु नानक साहिब फरमाते हैं कि लोग धन दौलत इकट्ठा करने में खोए हुए हैं और इस बात पर विचार करने का यत्न नहीं करते कि वे पापों का ऐसा भारी बोझ इकट्ठा कर रहे हैं जो अनेक लोगों के रूहानी विनाश का कारण बन चुका है और अब उनके विनाश का कारण बनेगा।
इस जर कारण कणी विगुत्ती, इन जर कणी खुआई, पापा बाजो होवे नाही, मोया साथ न जाई।
धन जो पाप के बिना इकट्ठा नहीं हो सकता, मृत्यु के बाद साथ नहीं जा सकता और प्रभु की दरगाह में दुर्दशा का कारण बनता है, वह हमारे लिए लाभप्रद किस प्रकार हो सकता है। गुरु अमरदास जी फरमाते हैं कि राजा, शासकीय अधिकारी आदि धन के मोह के अधीन पराई दौलत हत्याकर माया के विष का भंडार इकट्ठा कर लेते हैं। वास्तव में लोभ, लालच और माया उनको छल लेते हैं और अंत समय उन्हें यम के हाथों चोटें सहनी पड़ती हैं।
पूपत राजे रंग राय संचय बिख माया, कर कर हेत वधाएंदे पर दर्व चुराया, पुत्र कलत्तर नविस है बो प्रीत लगाया, वेख दिया ही माया तू गई पछता पछताया, जमदर बद्दे मारिय नानक हर पाया।
इसी भाव को प्रकट करते हुए गुरु अर्जुन देव जी फरमाते हैं कि राजा, महाराजा, हाकिम, शासकीय अधिकारी और धनी लोग परमात्मा का भय त्याग कर अनेक जुल्म करके धन एकत्रित करते हैं, परंतु यह धन दौलत, यह साजो सामान सब मौत के साथ ही खत्म हो जाता है।
पूपत होए कै राज कमाया, कर कर अनरथ विहाजी माया, संचत संचत थैली कीनी, प्रभ उस्ते डार अवर को दीनी, काच गगरिया अंब मजरिया, गर्व गर्व आहो महपरिया, निरपो होयो पया निहंगा, चीत न आयो करता संगा, लश्कर जोड़े किया संबाहा, निकसया फूकता होए गयो सुहा।
हमारे मन में हमेशा यह चिंता रहती है कि यदि हम बेईमानी नहीं करेंगे तो हमारे सांसारिक काम नहीं चलेंगे, परंतु जिन लोगों ने अपने जीवन में नेकी, सच्चाई और ईमानदारी से काम लिया है, वह सदा यही कहते हैं कि ईमानदारी की कमाई में बहुत बरकत अथवा सुख समृद्धि है और प्रभु स्वयं किसी न किसी प्रकार उनके सभी कार्य पूर्ण कर देता है। यह ठीक है कि अपनी मेहनत और नेक कमाई के द्वारा कोई व्यक्ति ऐशो इशरत तो नहीं कर सकता, परंतु यह कमाई मांस, शराब, इंद्रियों के भोगों तथा अन्य कई प्रकार के दुराचार तथा पापों से बचाती है। यह मन में संतोष तथा प्रभु का प्रेम और विश्वास पैदा करती है और सच्चे परमार्थ की नींव तैयार करती है। भूखियां भूख न उतरी। जो लोग सच्चे दिल से महसूस करते हैं कि सच्चा और स्थायी आनंद नेक जीवन और प्रभु प्राप्ति में है, वे प्रसन्नता पूर्वक हक हलाल की कमाई का नियम स्वीकार करते हैं। जो लोग आचरण की पवित्रता और आत्मिक आनंद से परिचित हैं या जो इसकी प्राप्ति के इच्छुक हैं, वे अनुचित ढंग से की गई कमाई का त्याग करते हैं। इस प्रकार की कमाई का त्याग उन्हें परमार्थ रूपी हीरे जवाहरात की प्राप्ति के लिए ईंट पत्थरों की कुर्बानी के समान प्रतीत होता है। परंतु जो लोग इस आनंद से अनजान हैं और जिन्हें इसे प्राप्त करने की कोई चाह नहीं, उन्हें दुनिया के नाशवान भोग और धन दौलत ही सब कुछ प्रतीत होते हैं। वे ये नहीं जानते कि ये भोग और अनुचित ढंग से कमाया गया धन लोक और परलोक दोनों में ही उनकी दुर्दशा का कारण बनता है। अतएव मनुष्य को चाहिए कि जो कुछ अपनी हक हलाल की कमाई से मिले उस पर संतोष करे तथा भोगों के लालच से बचे। धन की तृष्णा अग्नि के समान है, जो लकड़ी डालने पर कभी शांत नहीं होती बल्कि और भड़क उठती है। गुरु नानक साहिब कहते हैं कि सारे संसार का धन भी लालची के मन की भूख को नहीं मिटा सकता।
भुखियां भुख ना उतरी जे बन्ना पुरिया पार।
सूफी संत सरमद लोभ को खुआरी या दुर्दशा का कारण बताते हैं। वे कहते हैं कि लोभी व्यक्ति जहरीले सांपों से ज्यादा खतरनाक है।
सरमद तू जी खलक हेच यारी मतलब अस शाखे बरहना सायादारी मतलब इज्जत जी कनात अस्त ऊ खुआरी जी तमा बा इज्जते खुएश बाश खुआरी मतलब।
अर्थात ए सरमद, तू दुनिया से सच्चे प्यार की उम्मीद ना कर। बिना पत्तों का पेड़ किसी को भी छाया नहीं दे सकता। लोभ से अपमान और संतोष से सम्मान प्राप्त होता है। सम्मान से जी, अपमान की जिंदगी का तलबगार ना बन।
दुनिया तलबा रा की गमे दीनार अस्त बेमेहरी एशान बयक्द गर बिस्यार अस्त अज अकरबो मार हेच अंदेशा मकुन जी कौम हजर बकुन की नेशो खार अस्त।
अर्थात दुनिया के मतवाले सोने चांदी के लिए तड़पते हैं और एक दूसरे से दुश्मनी करने के लिए मशहूर हैं। तू सांपों और बिच्छुओं से ना डर, लेकिन इन माया के प्रेमियों से डर जिनके अंदर जहर और कांटे भरे पड़े हैं। गुरु अर्जुन देव जी फरमाते हैं कि लोभी सदा लोभ की लहरों में डोलता रहता है। वह योग्य अयोग्य भला बुरा नहीं देखता। वह प्यारे मित्रों, सगे संबंधियों, पूजा के योग्य माता पिता तथा अपने इष्ट को लूटने में भी लज्जा नहीं करता।
हे लोबा लंपट संग सिर मोरे अनक लहरी कलोलते तावंत जिया बहु प्रकारम अनक पांत बहु डोलते नच मित्रम नच इष्टम नच बाधव नच मात पिता तव लज्जया अकरणम करोत अखाद खादम असाजम साज समझया त्राहे त्राहे शरण स्वामी विज्ञाप्त नानक हर नर हरे।
जैसे जैसे मनुष्य की इच्छाएं पूरी होती जाती हैं, वैसे ही वह और बढ़ती जाती हैं। उसे कभी तृप्ति नहीं मिलती। तृप्ति केवल संतोष में ही है। संतोष के बिना ना कोई तृप्त हो सकता है और ना ही किसी का परमार्थ बन सकता है।
सहस खटे लख को उठतावै त्रिपत न आवै माया पाछै पावै अनक भोग बिख्या के करै नह तृप्तावै खप खप मरै बिना संतोख नहीं को राजै सुपन मनोरथ बिरथे सब काजै।
इसका यह अर्थ नहीं कि गुरु साहिबान अथवा संत महात्मा लोगों को आजीविका कमाने अथवा सांसारिक उन्नति करने से रोकते हैं। संत किसी की उन्नति या किसी के फलने फूलने के विरुद्ध नहीं होते। वे तो केवल यही आग्रह करते हैं कि आर्थिक और सांसारिक उन्नति सच्चाईपूर्ण और नेक उपायों द्वारा करनी चाहिए और हमेशा मेहनत, सत्य और ईमानदारी से काम लेना चाहिए। संत महात्मा लोगों को धन और माया के लोभ के प्रति इसलिए होशियार करते हैं कि सांसारिकता या माया उन पर हावी ना हो जाए और वे संसार में आने के प्रभु प्राप्ति के असली उद्देश्य को ना भूल जाएं। दो तरह की वृत्ति। गुरु नानक साहिब ने आशा की वार में एक और तो सांसारिक वृत्ति वाले असंतोषी विकारी पुरुष का नक्शा खींचा है, जो बुरे कर्मों में प्रवृत्त होकर अपने जीवन को बर्बाद कर देता है और मौत के बाद यातनाएं पाता है। दूसरी ओर सच्ची मेहनत तथा नेक कमाई करने वाले ऐसे संतोषी जीव का चित्र प्रस्तुत किया है जो सतगुरु द्वारा खींची हुई लकीर के अंदर रहता है तथा अकाल पुरुष या परमपिता परमात्मा की भक्ति करके सदा के लिए उससे मिलाप प्राप्त कर लेता है। सांसारिक तथा भोगी व्यक्ति की अवस्था का वर्णन करते हुए आप फरमाते हैं,
आपी न भोग भोग कै होए पसमत भौ सिधाया, वड्डा होआ दुनियादार गल संगल घत चलाया, अग्गै करनी कीरत वाची है बै लेखा कर समझाया, थाओ न होवी पौदई हुण सुनिया क्या रू आया, मन अंधा जन्म गुआया, मन अंधा जन्म गुआया।
आप संतोषी और धर्मात्मा पुरुष का वर्णन इस प्रकार करते हैं,
सेव कीती संतोखी जिन्नी सच्चो सच ते आया, उन्नी मंदा पैर न रखे हो कर सुकृत धर्म कमाया, उन्नी दुनिया तोड़े बंधना अन्न पानी थोड़ा खाया, तू बख्सीसी अगला नित देवै चढ़ै सवाया, वड्याई वड्डा पाया वड्याई वड्डा पाया।
साधक का असली संघर्ष ही काम क्रोध लोभ मोह अहंकार आदि विकारों के साथ है और बेईमानी की कमाई विकारों की जड़ है। जब अनुचित ढंग से धन प्राप्त किया जाता है तो ऐसे धन के साथ ऐब और पाप अपने आप ही आ जाते हैं। कोई विरला भाग्यशाली जीव ही उनसे बच सकता है। ये विषय विकार ऐब और पाप जीवों को गिराने तथा उनकी रूहानी उन्नति को नष्ट करने के लिए मन और माया द्वारा बिछाया गया एक जबरदस्त जाल है। इसके विपरीत हक हलाल की कमाई सब्र संतोष सहनशीलता तथा प्रभु की रजा अथवा मौज को स्वीकार करने की भावना पैदा करती है। यह जीव को मन और माया की टेक त्याग कर परमात्मा की शरण में आने का बल प्रदान करती है। जो लोग बेईमानी द्वारा पैसा इकट्ठा करने में अपनी चतुराई या लियाकत समझते हैं, वे असल में रेत की दीवारें खड़ी कर रहे हैं। परमार्थी की बुद्धिमानी योग्यता और चतुराई तो नेक कमाई में ही है, क्योंकि जो लोग बाहर दुनियावी लोभ से ऊपर नहीं उठ सकते, वे अंदर मन और माया के अनेक धोखों और प्रलोभनों का भी सामना नहीं कर सकेंगे। आंतरिक रूहानी मार्ग में रिद्धियां सिद्धियां परमार्थी की शक्ति नष्ट करने के लिए अनेक प्रकार के लालच और प्रलोभन देती हैं। जो लोग बाहर के प्रलोभनों के सामने दृढ़ नहीं रहते, वे अंदर के प्रलोभनों का भी मुकाबला नहीं कर सकते। पराये धन तथा अनीति या हेरफेर की कमाई का लोभ जीव को रूहानियत की बादशाहत से दूर रखने के लिए माया द्वारा खड़ा किया गया चतुर ठग है। इसलिए परमार्थी को इससे हमेशा सावधान रहना चाहिए। सच्चे अभ्यासी को इस भ्रम से निकलने का यत्न करना चाहिए कि दान पुण्य आदि जैसे शुभ कर्म पापों को धो सकते हैं। कबीर साहिब ऐसे व्यक्ति की वृत्ति पर आश्चर्य प्रकट करते हैं, जो अहिरन की चोरी करके सुई का दान करता है और फिर आशा करता है कि ऐसे दान के फल स्वरूप भगवान मिल जाए।
अहरन की चोरी करै करे सुई का दान, ऊंचा चढ़कर देखता केतक दूर विमान।
गुरु नानक साहिब फरमाते हैं कि लोग पहले चोरी ठगी धोखा हेराफेरी आदि द्वारा पराया धन इकट्ठा करते हैं और बाद में पिता दादा आदि के निमित्त दान पुण्य हवन यज्ञ श्राद्ध आदि करते हैं, परंतु वे ये नहीं जानते कि प्रभु की दरगाह में चोरी और अनीति का यह धन पहचान लिया जाएगा और उन्हें पुण्य के फल के स्थान पर सजा भोगनी पड़ेगी। गुरु साहिब स्पष्ट करते हैं कि प्रभु की दरगाह में केवल हक हलाल की कमाई में से दिए गए दान का शुभ फल मिलता है। चोरी, ठगी तथा बेईमानी की कमाई में से किए गए अथवा मृत्यु के बाद दूसरों द्वारा किए गए दान पुण्य आदि का नहीं।
जे मुहाका कर्म है, कर्म है पितरी दे, अग्गे वस सिंजाणी है, पितरी चोर करे, वड़िये हाथ दलाल के, मुसवी ए करे, नानक अग्गे सो मिले, जे खट्टे काले दे।
परमेश्वर थै डरिये रे। संत दादू दयाल जी ने आजीवन धुनिये का व्यवसाय करते हुए ईमानदारी के साथ अपना निर्वाह किया और साथ ही परमार्थ की साधना की। आप शिष्यों और अभ्यासियों को उपदेश देते हैं कि मनुष्य को अपने कर्मों का लेखा अवश्य देना पड़ता है, इसलिए हर बुरे कर्म से बचना चाहिए। लेन देन और व्यवहार में सच्चाई और नियत साफ होनी चाहिए। इस नियम को तोड़ना जहर पीने के समान है, जिससे मनुष्य की रूहानियत नष्ट हो जाती है।
डरिए रे डरिए, परमेश्वर थे डरिए रे, लेखा लेवे पर पर देवे, ता थे बुरा न करिए रे, साचा लीजी साचा दीजी, साचा सौदा कीजी रे, साचा राखी झूठा नाखी, बिख न पीजी रे।
संत दरिया साहिब बिहार वाले पराए माल के लिए ललचाने वालों को चेतावनी देते हैं कि जो मनुष्य कई उपायों द्वारा पराया माल हथिया लेता है और लाखों का स्वामी बन जाता है, मौत के समय उससे वह माल छिन जाता है और उसे यमदूतों के हाथों यातनाएं सहनी पड़ती हैं।
बहुविध माल बिरानी हरिया, पैसा लाख बटोरा, जाकर माल ते छीन लीनो, घेंचन लागे केरा।
साईं बुल्ले शाह पराया हक छीनने वाले को सावधान करते हैं कि ऐसा करके वह कर्मों का भारी बोझ इकट्ठा कर रहा है। क्या वह नहीं जानता कि उसे दोबारा जन्म लेकर यह कर्ज चुकाना पड़ेगा? इस तरह वह मनुष्य जीवन की अनमोल बाजी जुए में हार रहा है और लाखों का खेत व्यर्थ ही लुटा रहा है।
हक पर आया जा तो नाही, खाकर पार उठावेगा, फेर न आकर बदला देसे, लाखी खेत लुटावेगा, दा लाके विच जगदे जुए, जित्ते दम हरावेगा।
आप उन लोगों को धिक्कारते हैं जो ईश्वर से क्षमा मांगकर और सूदखोरी से तौबा करके फिर सूदखोरी करते हैं, या जो अपनी धर्म पुस्तकों की कसमें खाकर कहते हैं कि आगे से पराया माल नहीं हथियाएंगे, लेकिन मौका तलाश करके उसे फिर हथिया लेते हैं।
नित पढ़ना है इस्तगफार, कैसी तोबा है ए यार, सावे देके लवे सवाई, वाद्यां दी तू बाजी लाई, मुसलमानी ए कित्थों आई। नित पढ़ना है इस्तगफार, कैसी तोबा है ए यार, जिथे ना जाना ओथे जाएं, माल पराया मुंह तर खाएं, कूड़ किताबां सिर ते चाएं, ए तेरा इतबार, नित पढ़ना है इस्तगफार, कैसी तोबा है ए यार।
गुरपीर हामा ता भरे। बाइबल में पराया हक छीनने की मनाई की गई है। सेंट पॉल ने अपने एक पत्र में लिखा है कि सबको उनका हक दो, जिनके टैक्स तुम्हारे जिम्मे हैं उन्हें टैक्स दो, और जिनका लगान देना है उन्हें लगान दो। मजदूरों का हक छीनने वालों को चेतावनी दी गई है कि देखो उन मजदूरों की ओर जिन्होंने तुम्हारे खेत काटे हैं और जिनकी मजदूरी तुमने धोखे से छीन ली है। वे पुकार करते हैं और उनकी चीखें मालिक तक पहुंच गई हैं, अर्थात परमात्मा उनकी पुकार अनसुनी नहीं कर सकता और तुम्हें सजा देगा। 10 धर्मादेशों यानी 10 कमांडमेंट्स में से एक यह है, तुम चोरी नहीं करोगे। एक अन्य कमांडमेंट के अनुसार पड़ोसी की किसी भी चीज की इच्छा करना तक मना है। कुरान शरीफ में भी कहा गया है कि एक दूसरे का धन धोखे से मत छीनो और ना हाकिमों को रिश्वत दो। एक अन्य स्थान पर फरमाया गया है, जब तोलने लगो पूरा तोलो और ठीक तराजू से तोलो। असल में पराए धन और अनुचित ढंग से कमाए धन का लालच इतना प्रबल होता है कि साधारण जीव तो क्या, कई परमार्थी पुरुष भी इसके लोभ से नहीं बच पाते। हम सोचते हैं कि पैसा जिस तरह से भी कमाया जा सके कमा लें और फिर थोड़ा बहुत सात संगत की सेवा में खर्च कर दें, जिससे अपने आप ही सब कुछ ठीक हो जाएगा। यह ठीक है कि ना देने से देना अच्छा है, क्योंकि इससे धन का मोह घटता है, कमाई सफल होती है। विषय विकार, बीमारी, मुकदमे आदि में लगने वाला धन नेक काम में लगता है। धीरे धीरे नेक कमाई करने की प्रेरणा और शक्ति मिलती है और जीव गलत मार्ग से हटकर सही मार्ग की ओर प्रवृत्त होता है। परंतु जो लाभ नेक और पवित्र कमाई में से परमार्थ में लगाए धन का होता है, उसका मुकाबला नहीं किया जा सकता। हजूर महाराज सावन सिंह जी कहा करते थे कि सत्संगी भजन सिमरन चाहे कम करे, लेकिन बुरे कर्मों, बेईमानी की कमाई तथा धोखे और छल से जरूर बचे, क्योंकि भजन की कमी किसी ना किसी समय पूरी हो सकती है, परंतु ठगी, छल, कपट और बेईमानी तो परमार्थ की जड़ ही काट देते हैं। और पराये धन का हिसाब चुकाने के लिए जीव को दोबारा जन्म भी लेना पड़ सकता है। गुरु नानक साहिब ने पराये हक को छीनना हिंदुओं के लिए गायें और मुसलमानों के लिए सुअर का मांस खाने के समान बताया है। आप फरमाते हैं कि प्रभु की दरगाह में सद्गुरु अपने शिष्य का पक्ष तभी लेते हैं, तभी उसकी हिमायत करते हैं, यदि वह उनकी खींची हुई लकीर में रहता है और मुर्दार यानी प्राय धन से बचता है।
हक पराया नानका उस सुअर उस गाय, गुरपीर हामा ता परे जा मुर्दार न खाए।
सिख इतिहास बताता है कि गुरु घर द्वारा दशमांश जमा करने के लिए नियुक्त मसंद यानी आमदनी का दसवां भाग इकट्ठा करने वाला अधिकारी, जिनको शुरू में उनके प्रेम, श्रद्धा और सेवा भाव के लिए मसंद बनाया जाता था, समय बीतने के साथ खुद इस दशमांश का उपभोग करने लगे। परिणाम स्वरूप उनका आचरण गिर गया, उनके शिष्य होने की ऊंची और पवित्र भावना जाती रही और वे अनेक प्रकार की कुरीतियों के शिकार भी हो गए। हालत यहां तक पहुंच गई कि गुरु गोविंद सिंह जी को उनके विरुद्ध बहुत कठोर कदम उठाने पड़े और उनके साथ हर प्रकार का मेलजोल और लेन देन बंद करना पड़ा। वास्तव में सेवा या भेंट के धन का सही उपयोग भी कोई पूर्ण महात्मा ही कर सकता है। कबीर साहिब फरमाते हैं,
गुरु बिन माला फेरता, गुरु बिन करता दान, गुरु बिन सब निष्फल गया, बूझो वेद पुराण।
दान विवेक पूर्वक देना चाहिए। ऐसे लोगों को दान देना उचित नहीं है जो दान से प्राप्त धन को शराब आदि में खर्च करते हैं। ऐसा दान जीव के बंधन का कारण बनता है। परंतु परमात्मा के साथ अभेद हो चुके महात्माओं के सुझाव के अनुसार लोक हित में लगाया गया धन परमार्थ में सहायक होता है। गुरु अमरदास जी फरमाते हैं,
तन मन तन सब सौंप गुर को, हुकम मनिए पाइए।
गुरुमत पूर्ण ज्ञानी सदगुरु के बताए मार्ग और आदेश पर चलने का नाम है। यह सिद्धांत पूर्ण गुरु के शिष्य की संपूर्ण रहनी पर लागू होता है और दान पुण्य आदि का विषय भी इसमें शामिल है। प्रसिद्ध आध्यात्मिक कवि भाई गुरुदास जी फरमाते हैं,
गुरसिखी दा कर्म ए गुर फरमाए गुरसिख करना।
पंडित, पुरोहित, महंत, भाई, मुल्ला, पादरी तथा मंदिरों, मस्जिदों, गुरुद्वारों, सत्संग घरों आदि के प्रबंधक भी इस भ्रम का शिकार हो जाते हैं कि दान का धन ऐश, आराम और विलास का बहुत आसान साधन है। इस भावना को जितनी जल्दी त्याग दिया जाए अच्छा है। कबीर साहिब फरमाते हैं कि गृहस्थ और दुनियादार लोग अनेक कामनाएं मन में रखकर दान देते हैं। साधु कहलाने वाले जो लोग समझते हैं कि वे इस पराये धन को हजम कर लेंगे, वे अपने आप को धोखा दे रहे हैं।
गिरही का टुकड़ा बुरा, दो दो आंगुल दांत, भजन करे ते उबरे, नातर काड़े आंत।
गुरु गोविंद सिंह के विषय में प्रसिद्ध है कि उन्होंने एक बार सेवा और भेंट का बहुत सा धन नदी में फिकवा दिया, लेकिन अपने जरूरतमंद शिष्यों को नहीं दिया। कारण पूछे जाने पर आपने फरमाया कि चढ़ावे का धन जहर के समान होता है। शिष्य सद्गुरु के बेटे बेटियों के समान होते हैं और कोई भी पिता अपने बच्चों को जहर नहीं खिला सकता। गुरु अमरदास जी फरमाते हैं कि योगी लोग घर घर भिक्षा मांगते फिरते हैं। वे यह भूल जाते हैं कि इस तरह प्राप्त किए हुए पैसे पैसे और दाने दाने का हिसाब देना पड़ता है। पहले तो दुनिया का कथित त्याग कर देना और फिर उसी दुनिया के आगे हाथ फैलाना ना बुद्धिमता की निशानी है ना योग की। गुरु साहिब कहते हैं कि घर घर मांगने का नाम योग या फकीरी नहीं है। जो लोग प्राय धन और दान पर निर्भर रहते हैं वे मनुष्य चोले और साधु के भेष दोनों पर दाग लगाते हैं। सांसारिक आशा तृष्णा से ऊपर उठकर केवल नाम की याचना करने वाले ही सच्चे साधु और फकीर होते हैं और वे ही अपने मनुष्य जन को सफल करते हैं।
जोगी होवा जग पवा घर घर भीखिया लेऊं दरगह लेखा मंगिए किस किस उत्तर देऊं दरवेसी को जानसी विरला को दरवेश जे घर घर हंडा मंगदा तिग जीवन तिग वेश जे आसा अंदेसा ताज रह गुरमुख भिखिया नाओ तिसके चरण पखालिए नानक हों बलिहारे जाऊं।
दादू साहिब फरमाते हैं कि परमात्मा के सच्चे भक्त न तीर्थ स्थानों और वनों में जाकर रहते हैं, न व्रत आदि बहिर्मुखी क्रियाओं में उलझते हैं और न कभी भीख मांगते हैं। वे संसार से कोई आशा नहीं रखते।
तीर्थ व्रत न बनखंड बासा मांग न खाए नहीं जग आसा।
पलटू साहिब बड़े जोरदार शब्दों में कहते हैं कि जिन ब्राह्मणों और पंडों ने वेदों और पुराणों का टीका करके लोगों को समझाने के बहाने अपनी दुकान चला रखी है वे बाहर से तो बड़े धर्मात्मा दिखाई देते हैं पर वास्तव में उनका मन माया के हाथों बिका हुआ है।
वेद पुराण पंडित बांचे करता अपनी दुकान है जी अर्थ को बूझ के टीका करे माया में मन बिकान है जी।
हंस चुगे ना घूंगी। संतों के जीवन का चित्रण करते हुए पलटू साहेब उनकी ऊंची रहनी की ओर संकेत करते हुए फरमाते हैं कि संतों का जीवन धीरज सब्र संतोष से परिपूर्ण होता है। उनके मन में दुनिया की कोई चाह नहीं होती। जिस प्रकार हंस कभी घोंगे नहीं चुगते और शेर कभी घास नहीं खाते उसी प्रकार संत जन कभी भिक्षा नहीं मांगते।
सोई संत होए जाए रहे जो ऐसी रहनी मुख से बोले साज करे कछु उज्जल करनी एक भरोसा करे नहीं काहू से मांगे मन में करे संतोष तनिक ना कब हूं लागे भीख ना मांगे संत जन कह गए पलटू दास हंस चुगे ना घोंगी सिंह चरे ना घास।
पलटू साहेब ने आटे दाल की दुकान करके निर्वाह किया। कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाए और ना किसी से कोई भेंट स्वीकार की। हजरत सुल्तान बाहू ने भी विद्वानों और हाफिजों की आलोचना करते हुए कहा है कि वे अपनी विद्वत्ता पर गर्व तो बहुत करते हैं लेकिन उसे गली गली बेचते फिरते हैं। उनके लोक और परलोक दोनों नष्ट हो जाते हैं।
पढ़ पढ़ आलम करन तकबर हाफज करन वडाई हू गलियां दे विच फिरन निमाणे बगल किताबां चाई हू जिथे वेखण चंगा चोखा पढ़न कलाम सवाई हू दोही जहानी मुठे जिन्ना खादी वेच कमाई हू।
स्पष्ट है कि धर्म पुस्तकों के ज्ञान को इस तरह रोजी का साधन बना लेना संत महात्माओं की दृष्टि में हक हलाल की कमाई नहीं है। लोगों से पैसे लेकर उनके लिए ऊंचे स्वर में किसी धर्म ग्रंथ का पाठ करना या उसकी व्याख्या करना तो उन्हें धोखा देना है, लूटना है, क्योंकि इससे उन्हें कोई पुण्य लाभ नहीं होता। इस प्रकार की अपवित्र कमाई भीख की कमाई या प्रायः धन छीन कर की गई कमाई से बेहतर नहीं है। नाम बेचकर अपनी रोजी कमाने की भी संतों ने सख्त मनाई की है। नाम दिया जाता है, इसे बेचा नहीं जाता। हजूर महाराज चरण सिंह जी सत्संग में अक्सर फरमाया करते थे कि नाम की दौलत संतों को मुफ्त मिलती है और वे उसे मुफ्त ही देते हैं। गुरु नानक देव जी फरमाते हैं कि जो नाम को बेचते हैं उनके जीवन को धिक्कार है, उनकी परमार्थ की खेती उजड़ जाती है और अंत समय में साथ ले जाने के लिए उनके पास कुछ भी नहीं रह जाता। सच्चे श्रम के बिना परमात्मा की दरगाह में कभी मान प्राप्त नहीं होता।
त्रिगितना का जीविया जे लिख लिख विचे नाओ, खेती जिनकी उजड़े खलवाड़े क्या थाओ, सच्चे सरमे बाहरे अग्गे लहे नदाद।
स्पष्ट है कि गुरु नानक देव जी के अनुसार नाम का बेचना मेहनत करना नहीं है, इसे नेक या हक लाल की कमाई नहीं कहा जा सकता। कुछ लोग परमार्थ का मार्ग बताने, सत्संग करने तथा नाम देने के बदले जिज्ञासुओं से भेंट, दक्षिणा, फीस आदि लेते हैं, परंतु सच्चे संत महात्माओं ने ऐसी कमाई को निंदा योग्य कहा है। ऐसे लोग अपनी आध्यात्मिक प्राप्ति तो खो ही बैठते हैं, उनके अनुयायी भी ऐसे गुरुओं से कोई लाभ प्राप्त नहीं कर पाते। महान सूफी दरवेश बाबा फरीद के बारे में सभी जानते हैं कि उनका जीवन सादगी, पवित्रता, सब्र और संतोष का जीता जागता दृष्टांत है। आपके शिष्य जंगल में से लकड़ियां काटकर अपना गुजारा किया करते थे। आपने अपने शिष्यों को कठोर हिदायत दी हुई थी कि अगर लंगर में किसी चीज की कमी आ जाए तो उसके बिना गुजारा कर लेना, लेकिन किसी के आगे हाथ ना फैलाना। आप दूसरों पर निर्भर होने की बजाय मौत को बेहतर समझते थे।
फरीदा बार पराइया बैसना, साई मुझे न दे, जे तू एवें रखसी जियो शरीरों ले।
अर्थात, ए मालिक, मुझे अपनी इच्छा पूरी करने के लिए पराये दर पर ना जाना पड़े, इससे अच्छा तो यह होगा कि मुझे मौत दे दे। आप फरमाते हैं कि अपनी कमाई से मनुष्य को यदि सादा या मामूली खाना मिले तो भी उसे संतुष्ट रहना चाहिए, दूसरों के स्वादिष्ट भोजन को देखकर ललचाना नहीं चाहिए।
रुखी सुखी खाए कै ठंडा पानी पियो, फरीदा देख पराई चोपड़ी ना तरसाए जियो।
एक बार एक फकीर साईं शर्फुद्दीन ने हुजूर महाराज सावन सिंह जी की सेवा में बड़ी दीनता के साथ नामदान के लिए प्रार्थना की। उसने गले में कफनी डाली हुई थी और वह लोगों के दान पर गुजारा करता था। हुजूर ने उसे नाम देने से इनकार कर दिया। उसके अर्ज करने पर हुजूर महाराज जी ने फरमाया, नाम के अभ्यास के लिए हक हलाल की कमाई जरूरी है। जो शख्स अपनी रोटी आप नहीं कमाता, उसे नाम देने से क्या फायदा। दूसरे दिन साईं ने कफनी उतार दी, साधारण कपड़े पहन लिए और कुल्हाड़ी लेकर लकड़ी काटने का काम शुरू कर दिया। इस पर हजूर ने उसे नाम देकर अपनी संगत में शामिल कर लिया। हजूर महाराज सावन सिंह जी मौलाना रूम का वह कलाम अक्सर सुनाया करते थे जिसमें मौलाना ने फरमाया है कि खुदा की इबादत के लिए हक हलाल की रोटी जरूरी है। हराम की रोटी से दुख और कष्ट पैदा होते हैं, हक हलाल की रोटी से इंसान में खुदा का नूर पूरी ऊंचाई पर पहुंचता है। हक हलाल की रोटी से बंदगी का शौक और प्रभु से मिलाप का इरादा पक्का होता है, प्रभु का ज्ञान और बोध पैदा होता है। इससे हृदय में कोमलता और प्रभु प्रेम उत्पन्न होता है। जिस रोटी से तुझे अपने अंदर ईर्ष्या, अज्ञानता और आलस्य पैदा होते दिखाई दें, उसे तू हराम की रोटी समझ। संतों के निजी वृतांत। एक नहीं, अनेक पूर्ण संतों के उपदेश तथा उनके जीवन के वृतांत हमारे सामने हैं। संत नामदेव जी ने सारी उम्र कपड़े रंग कर और सिलकर अपना तथा अपने परिवार का गुजारा किया। संत रविदास जी ने जीवन भर जूतियां गांठ गांठ कर अपना निर्वाह किया। हालांकि राजा पीपा तथा मेवाड़ की रानी मीराबाई आपके शिष्यों में से थे। एक बार मीराबाई एक कीमती हीरा जबरदस्ती आपकी झोपड़ी में छोड़ती हुई आपसे कह गई कि इसे बेचकर आराम से जिंदगी बसर करें। आप यह जो जूतियां गांठने का काम करके अपना गुजारा करते हैं, इसके कारण मुझे लोगों के ताने सुनने पड़ते हैं और बड़ी शर्म महसूस होती है। पर काफी समय के बाद वह जब फिर अपने गुरुदेव से मिलने आई तो तो देखा कि वही झोपड़ी है और वही जूतियां गाँठने का काम जारी है। हीरा वहीं पड़ा था जहां वह रख गई थी। उसे हैरान और दुखी देखकर रविदास जी ने कहा कि बेटी, मुझे जो कुछ भी मिला है जूतियां गांठ गांठ कर गुजारा करते हुए ही मिला है। अगर तुझे मेरे पास आने में शर्म महसूस होती है तो घर बैठे ही भजन सिमरन कर लिया कर। संत रविदास जी ने अपनी वाणी में नेक कमाई के विषय को कई पहलुओं से स्पष्ट किया है। सबसे पहले आप हमारे इस भ्रम को दूर करते हैं कि परमात्मा की भक्ति केवल घर बार का त्याग करके जंगलों, पहाड़ों, गुफाओं आदि में छिपकर अथवा हट कर्मों के द्वारा ही की जा सकती है। आप फरमाते हैं कि जिस व्यक्ति को एक राम और दूसरे सच्चे श्रम पर भरोसा है उसका जीवन सफल है। गृहस्थ में रहते हुए मनुष्य को नाम का अभ्यास करना चाहिए। घर को त्याग कर वन में भटकने का कोई फायदा नहीं है, बल्कि नेक कमाई करते हुए घर में रहते हुए अभ्यास करने से घर बैठे ही प्रभु से मिलाप हो सकता है।
एक भरोसो राम को और भरोसो सत्कार, सफल होयो जीवना कह रविदास विचार। ग्रह है रहो सत्कर्म करो, हरदम चिंतो ओंकार, रविदास हमारो बांधला है केवल नाम आधार। नेक कमाई जो करें ग्रह तज बन नह जाए, रविदास हमारो राम राय ग्रह में मिल हैं आए।
महाराज चरण सिंह जी अपने सत्संगों में कई बार समझाते थे कि घर बार का त्याग कर देने से हमारे मन में मालिक की भक्ति का ज्यादा शौक पैदा नहीं हो जाता और ना ही इस प्रकार के त्याग द्वारा जीवन की मूल आवश्यकताएं रोटी, कपड़ा और सिर पर छत खत्म हो सकती है। जंगल में भी पेट रोटी मांगता है, तन ढकने के लिए कपड़े की जरूरत पड़ती है और सिर पर किसी छत या छाया की। घर बार त्याग कर हम अपना बोझ खुद उठाने के बदले दूसरों पर या समाज पर डाल देते हैं। संत नामदेव, संत रविदास, संत कबीर और गुरु नानक साहिब ने स्पष्ट रूप से समझाया है कि मनुष्य संसार का कामकाज करते हुए भी प्रभु के नाम का सिमरन कर सकता है। संत रविदास जी फरमाते हैं कि जो प्रेमी अपने हाथ कार्य की ओर तथा हृदय प्रभु की ओर लगाए रखता है, प्रभु स्वयं ऐसे भक्त के घर जा पहुंचते हैं।
जिहवा भजय हरि नाम नित, हथ करह नित काम, रविदास बहे निश्चिंत हम, मम चिंत करेंगे राम। जिहवा सो ओंकार जप, हथन सो कर कार, राम मिले कर आए कर, कह रविदास विचार।
संत नामदेव जी भी कहते हैं कि मैं कपड़े रंगने और सीने में लगा रहता हूं, परंतु प्रभु के नाम को एक क्षण के लिए भी नहीं भूलता।
रांगन रांगू सीवन सीवू, राम नाम बिन घरी न जीवू।
नामदेव जी अपने भक्त को समझाते हुए कहते हैं कि हे त्रिलोचन, हाथ पैरों से श्रम करते हुए अपना चित परमपिता परमात्मा में लगाए रखो।
नामा कहे त्रिलोचना, मुखते राम संभाल, हाथ पाओ कर काम सब चीत निरंजन नाल।
पर धन पर दारा पर हरि, नामदेव जी का कथन है कि जो व्यक्ति पराये धन और पराई स्त्री से दूर रहता है परमात्मा उसके निकट बसता है।
पर धन पर दारा पर हरि, ताके निकट बसे नर हरि।
यही बात पांचवीं शताब्दी में लिखी नीति कथाओं की प्रसिद्ध संस्कृत पुस्तक हितोपदेश में इन शब्दों में व्यक्त की गई है। मातृवत्र पर दारेषु पर द्रव्येषु लोष्टवत, आत्मवत सर्वभूतेषु य पश्यति स पंडिता। अर्थात बुद्धिमान वही है जो पराई स्त्री को माता के समान, पराये धन को ढेले के समान और सब प्राणियों को अपने समान समझता हो। शेर की तरह जुल्म करके अपनी रोजी कमाने वाले व्यक्ति को नामदेव जी ने महाठग कहा है।
सिंगच भोजन जो नर जाने, ऐसे ही ठग देओ बखाने।
नेक कमाई। संतों ने यह विचार भी बलपूर्वक प्रकट किया है कि परिश्रम का जाति पाति से कोई संबंध नहीं है और कोई भी व्यवसाय छोटा या निम्न नहीं है। जिस भी सदाचारपूर्ण कार्य के द्वारा हम ईमानदारी के साथ अपनी जीविका कमा सकें, वही काम अच्छा है और रूहानी तरक्की में हमारी सहायता करता है। गुरु रविदास जी ने सुकृत या नेक कमाई को इतना महत्व दिया है कि आपने सुकृत को ही सच्चा धर्म, सच्ची शांति का स्रोत और भवसागर से पार होने के लिए सरल और उत्तम साधन माना है। आप कहते हैं कि परमार्थ के प्रेमी को श्रम को ही ईश्वर मानते हुए नेक कमाई में लगे रहना चाहिए। ऐसा सुकृत मनुष्य के रूहानी अभ्यास में सहायक होकर उसे प्रभु प्राप्ति के मार्ग पर दृढ़तापूर्वक चलने की प्रेरणा देता है।
रविदास होनज हथ है राखों रामबी आर, सुकृत ही मम धर्म है तारेगा भव पार। श्रम को ईश्वर जान के जो पूजे दिन रैन, रविदास तिने संसार में सदा मिले सुख चैन।
परंतु आप स्पष्ट करते हैं कि केवल श्रम ही काफी नहीं है, श्रम का नेक और पवित्र होना भी अत्यंत आवश्यक है। जिनके पास धर्म अथवा नीतिपूर्ण श्रम साधना अर्थात हक हलाल की कमाई और प्रभु भक्ति का दोहरा साधन होता है, उनकी कमाई और उनकी साधना फलीभूत होती है और उनका जीवन सफल होता है।
धर्म कर्म दोए एक हैं, समझ ले हो मन माहे, धर्म बिना जो कर्म है रविदास न सुख तिस माहे। रविदास श्रम कर खाए है जो लो पार बसाए, नेक कमाई जो करई कब हुन निफल जाए। प्रभ भक्ति श्रम साधना जग में जिन्हें पास, तिन्हें जीवन सफल भयो सत भाखे रविदास।
गुरु साहिब ने परिश्रम करने, नेक कमाई करने और नाम जपने के साथ साथ अपने कमाए धन को बांट कर उपभोग करने पर जोर दिया है। अन्य कई धर्मों और धर्म पुस्तकों में अपनी नेक कमाई में से दशमांश परमार्थ में खर्च करने का उपदेश दिया गया है। जिस दयालु दाता ने सब कुछ दिया है उसकी बख्शी हुई कमाई में से कुछ अंश उसके निमित्त खर्च करना, उसका शुक्राना अदा करना तथा उसके प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट करने का एक ढंग है। इससे धन का मोह घटता है, कमाई सफल होती है, कर्मों का बोझ हल्का होता है और परमार्थ में उन्नति होती है। कबीर साहिब फरमाते हैं कि यदि घर में पैसा बढ़ जाए तो यह लगभग ऐसा ही है जैसे नाव में पानी बढ़ जाता है तथा उसके डूबने का भय होता है। जिस प्रकार नाव में बैठा व्यक्ति दोनों हाथों से उलीच कर पानी बाहर निकालता है, इसी प्रकार बुद्धिमान व्यक्ति को भी चाहिए कि बढ़ते हुए धन में से मुक्त हस्त जरूरतमंदों पर खर्च करे।
जो जल बाड़े नाव में घर में बाड़े दाम, दो हाथ उलीचिए यही सज्जन को काम।
दान देना अच्छा है, अपनी कमाई में से औरों को बांटकर उस कमाई का उपयोग करना अच्छा है, परंतु ऐसे दान तथा बांटने का आधार नेकी और ईमानदारी की कमाई होनी चाहिए, धोखे बेईमानी या लूट की कमाई नहीं। संत नामदेव जी, रविदास जी, कबीर साहिब तथा गुरु साहिबान की मिसालें तो कुछ दूर की हैं, परंतु आज के समय में भी बाबा जैमल सिंह जी महाराज, हजूर महाराज सावन सिंह जी, सरदार बहादुर जगत सिंह जी महाराज तथा महाराज चरण सिंह जी की मिसालें हमारे सामने हैं। बाबा जैमल सिंह जी ने स्वामी जी महाराज से आगरा में नामदान प्राप्त किया। सतगुरु की दया मेहर से थोड़े समय में ही आपको संत गति प्राप्त हो गई। आपने स्वामी जी महाराज से विनती की कि मैं बाकी सारा जीवन आपके चरणों में बिताना चाहता हूं। स्वामी जी महाराज ने खुद सारी उम्र हक हलाल की कमाई करते हुए सात संगत की मुफ्त सेवा की थी। आपने बाबा जी महाराज के सामने भी यही आदर्श रखते हुए फरमाया, सत्संगी को संसार में स्वार्थ और परमार्थ दोनों कमाने चाहिए। अगर त्याग में रहोगे तो प्रायः अन्न खाना पड़ेगा, माथा टेकने और सेवा करने वाले तुम्हारी कमाई लूट लेंगे। अपने गुजारे के लिए अभ्यासी को कोई ना कोई काम करना चाहिए। भजन सुमिरन में तरक्की के लिए हक हलाल की कमाई से गुजर करना जरूरी है। सद्गुरु के आदेश का पालन करते हुए बाबा जी महाराज फौज में भर्ती हो गए। 32 साल तक फौज में नौकरी करके अपना गुजारा किया तथा बाकी सारा जीवन अपनी पेंशन पर गुजारा करते हुए साध संगत की सेवा में बिताया। नेकी और हक हलाल की कमाई के विषय में बाबा जी महाराज एक पत्र में लिखते हैं, मनुष्य ने अपने हक की कमाई छोड़कर दूसरे का हक फ्रेब यानी धोखे से खाना अच्छा समझा है। यह नहीं समझा कि जो मालिक ने मुझे दिया है सो मेरे खाने के लिए दिया है, सो मैं 9 हिस्से खुद खाऊं और 10वां हिस्सा मेरा नहीं है, मेरे पैदा करने वाले मालिक का है। मेरा उसके साथ करार यानी वायदा है कि मैं अपनी कमाई में से 10वां हिस्सा मालिक को दूंगा, यह इस मनुष्य ने नहीं समझा है। ज्यों ज्यों इसने बढ़ाई पाई त्यों त्यों इसने अपने से जो छोटे या अदने थे जोर या ठगी से उनकी कमाई खाना अच्छा समझा और अपनी कमाई या तो जमा की या फजूल खर्च कर दी। ऐसे बुरे कार्य करके जिनका खाया था उनका आगे जाकर जरूर चुकाना भी था, सो जन्म ले लेकर वह चुकाया, ढोर पशु गधा बन बनकर जी। इसलिए यह समझ लो कि अपनी हक की कमाई के सिवाय कभी किसी का नहीं खाना चाहिए। यह परमार्थ की पहली सीढ़ी है। चाहे सारी दुनिया का राजा हो तब भी मनुष्य को अपने हक की अपने हाथों कमाई करके खानी चाहिए। सो अपनी नौकरी हक की कमाई करो, आप भी खाओ, औरों को भी दो, घर वालों को भी दो और यथाशक्ति सात संगत को भी दो। इसी ऊंचे पवित्र आदर्श पर हजूर महाराज सावन सिंह जी सारी उम्र दृढ़तापूर्वक चलते रहे। आप फौज के इंजीनियरिंग विभाग में सब डिविजनल अफसर थे। आपने पूरी लगन और मेहनत के साथ नौकरी करते हुए ईमानदारी की मिसाल कायम की और अपनी नेक कमाई में से खुले दिल से साधु संतों की सेवा में धन खर्च किया। जब आप कोहमरी में नियुक्त थे तब आपका घर साधुओं और जरूरतमंदों की सेवा के लिए प्रसिद्ध था। बाबा जी महाराज से नामदान लेने के बाद अपनी कमाई में से जितना पैसा बाबा जी महाराज का हुक्म होता अपने तथा अपने परिवार के खर्च के लिए रखकर बाकी सारा वेतन बाबा जी महाराज के पास सात संगत की सेवा के लिए भेज देते थे। बाबा जी महाराज आपकी हक हलाल की कमाई संगत पर खर्च करके बहुत प्रसन्न होते थे। बाबा जी महाराज द्वारा महाराज सावन सिंह जी को लिखे पत्रों से पता चलता है कि डेरे में पहला कुआं, शुरू शुरू की कई इमारतें तथा स्वामीबाग आगरा में बाबा जी ने जो कमरे बनवाए वे हजूर की नेक कमाई से बने थे। संत दूरदर्शी होते हैं। महाराज सावन सिंह जी ने बार वाले जो कि मिंट गुमरी और लायलपुर का एक अंश है उस भाग में अच्छी उपजाऊ जमीन खरीदने के लिए बाबा जी महाराज से आज्ञा मांगी, परंतु बाबा जी महाराज ने आज्ञा नहीं दी। बाबा जी महाराज ने फरमाया कि तुम्हारी हक हलाल की कमाई है, यह बार कई बार बसी और कई बार उजड़ी है, मैं तुमको ऐसे स्थान पर जमीन दिलवाऊंगा जहां से तुम्हें और तुम्हारे परिवार को कभी ना उजड़ना पड़े तथा तुम्हारी पीढ़ियां आराम के साथ गुजारा करती हुई सात संगत की सेवा कर सकें। हजूर महाराज जी ने फौज की नौकरी से रिटायर होने के बाद सिरसा के नजदीक ऐसी भूमि सस्ते भाव में खरीद ली जहां उस समय सिर्फ रेत ही रेत थी। बाबा जी महाराज के वचनों का महत्व और भाव उस समय प्रकट हुआ जब बार का इलाका पाकिस्तान में चला गया तथा सिरसा के इलाके में नहर पहुंचने के कारण वहां की धरती बहुत उपजाऊ साबित हुई। हजूर महाराज सावन सिंह जी ने अपनी सरकारी नौकरी पर अपना तथा अपने परिवार का गुजारा किया तथा सेवानिवृत्ति और गुरुपद को संभालने के बाद अपनी पेंशन तथा खेती की आमदनी से अपना तथा अपने परिवार का पालन पोषण किया। आप जब तरन तारण जाते थे तो प्रायः कोड़ियों के आश्रम में जाकर कोड़ियों को मिठाई बांटते और आश्रम के लिए कुछ दान भी देते थे। हजूर महाराज जी किसी से कुछ लेते नहीं थे, सिर्फ देना ही जानते थे। जिस प्रकार एक पिता अपने बच्चों को प्रेम के साथ इनाम देता है, इसी प्रकार आपके दिए हुए रुपये कई सत्संगियों ने अभी तक प्यार के साथ संभाल कर रखे हुए हैं। 17 सितंबर 1947 को असोज की संक्रांति यानी पहली तारीख का सत्संग था। सत्संग की समाप्ति पर हजूर ने फरमाया, मैंने सारी उम्र अपनी हक हलाल की कमाई पर गुजारा करके बाबा जी महाराज के हुक्म की तामील की है। संगत का एक पैसा भी कभी अपने निजी काम में इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि सत्संग से अपने निजी काम के लिए बतौर कर्ज भी कभी कुछ नहीं लिया। बाहर सत्संग करने जाने के लिए डेरे की मोटर का इस्तेमाल जरूर किया है, या हो सकता है कि कभी बाग से सब्जी लेकर बीबी रली ने बना ली हो। बीबी रली निरंतर हजूर महाराज सावन सिंह जी तथा उनके परिवार की सेवा करती रही। हजूर महाराज जी का खाना भी आप ही बनाती थी। इन दोनों के लिए मैं संगत से माफी मांगता हूं। मुझे किसी से अगर कुछ लेना है तो वह छोड़ता हूं, अगर किसी का मुझे कुछ देना हो तो वह बता दे और ले लेवे। हजूर ने फिर फरमाया, जिस किसी को मैंने कभी कुछ नर्म गर्म कहा हो वह मुझे माफ कर दे। सदगुरु के मुखारविंद से यह वचन सुनकर सारी संगत की आंखें भर आई, क्योंकि यह एक प्रकार से सदगुरु की ओर से घोषणा थी कि वे अपना कार्य पूर्ण करके परमधाम जा रहे हैं। एक दिन डेरे में हजूर ने एक सेवादार श्री गोपाल सिंह लट्ठा को 40 रुपये दिए और फरमाया, कई साल पहले मेरे दफ्तर में एक अर्दली था, उसने यह रुपये मेरे पास रखे थे। एक बार वह छुट्टी लेकर गया और फिर लौटकर नहीं आया। मैं उसका रास्ता देखता रहा, उसके रिश्तेदारों और वारिसों की बहुत तलाश की कि रुपया उसके बाल बच्चों को दे दूं, मगर कोई पता ना चला। अब यह रुपये राय साहेब मुंशीराम, जो उस समय डेरे में सेक्रेटरी थे, को दे दो कि सेवा में जमा कर लें। सदगुरु हजूर महाराज चरण सिंह जी, जो महाराज सावन सिंह जी के पौत्र थे, बताते थे कि एक बार हजूर बड़े महाराज जी ने आपको तथा आपके छोटे भाई सरदार पुरुषोत्तम सिंह को बुलाकर कहा, देखो बेटा, मैंने जब भी हाथ बढ़ाया है तो कुछ देने के लिए ही बढ़ाया है, कभी भी लेने के लिए हाथ नहीं फैलाया, तुम भी हमेशा इसी असूल पर कायम रहना। सरदार बहादुर महाराज जगत सिंह जी राजकीय कृषि विद्यालय लायलपुर में वाइस प्रिंसिपल थे। आप अपने खर्च के लिए कुछ रुपए रखकर अपने वेतन का बाकी सारा अंश गरीब विद्यार्थियों तथा जरूरतमंद रिश्तेदारों में बांट देते थे। कई गरीब विद्यार्थियों को तो अपनी पढ़ाई के दौरान यह पता भी ना लग सका कि हर महीने उनकी फीस कौन दे रहा है। एक विद्यार्थी को तो आपने आगे पढ़ने के लिए अपने खर्च से विलायत तक भेजा। आपने सारी उम्र अपनी कमाई तथा पेंशन पर गुजारा करते हुए साध संगत की मुफ्त सेवा की। सरदार बहादुर महाराज जगत सिंह जी के समय तक राधा स्वामी सत्संग ब्यास की चल तथा अचल संपत्ति का काफी विस्तार हो चुका था। सदगुरु महाराज चरण सिंह जी ने 1957 में राधा स्वामी सत्संग ब्यास नामक एक ट्रस्ट स्थापित करके लाखों रुपए की परमार्थी संपत्ति, जो संत सदगुरु होने के नाते उनके निजी नाम पर थी, ट्रस्ट के नाम कर दी। अब इस प्रकार डेरे में आने वाली सेवा भेंट आदि सब ट्रस्ट में जमा होती है और डेरे के सदगुरु के नाम पर परमार्थी संपत्ति का एक पैसा भी नहीं है। ट्रस्ट की स्थापना से पहले भी डेरे के किसी संत सदगुरु ने सेवा की राशि में से एक पाई भी कभी अपने लिए खर्च नहीं की थी। सदगुरु के रूप में कार्यभार संभालने से पहले महाराज चरण सिंह जी सिरसा में वकालत करते थे और बाद में आपका खर्च अपने निजी फार्म की आमदनी से चलता रहा। सत्संग के प्रबंध के साथ निकट या दूर का संबंध रखने वाले सभी सत्संगियों को इस बात का व्यक्तिगत ज्ञान है कि महाराज जी का अपना तथा अपने परिवार का ही नहीं, बल्कि कई सेवादारों का खर्च भी आपकी निजी आमदनी से होता था। इसके साथ ही आप हर साल भारी मात्रा में अनाज, गुड़, शक्कर आदि सामान अपने फार्म से लंगर की सेवा के लिए देते रहे तथा गुप्त रूप से भी कई प्रकार से सत्संगियों की तथा डेरे की आर्थिक सहायता करते रहे। ऐसे महान संत सद्गुरुओं के ऊंचे रूहानी ज्ञान के साथ साथ उनकी नेक तथा निर्मल रहनी, निष्काम सेवा तथा अनुपम ईमानदारी ने उन्हें आज के युग में देश विदेश के बड़ी बारीकी से खोज पड़ताल करने वाले जिज्ञासुओं में लोकप्रिय बनाने में बहुत बड़ा योगदान दिया है। मन मेरे भूले कपट न कीजे। संतमत का ये मूल सिद्धांत है कि जीव को जगत में बांध कर रखने वाली चीज उसके कर्म ही हैं और उसे दूसरों से ली हुई पाई पाई का हिसाब देना पड़ता है। सरदार बहादुर महाराज जी फरमाया करते थे कि अगर अनाज का एक दाना भी पड़ोसी के खेत से आपके खलियान में अनजाने में आ गया है तो उसका भी कर्ज चुकाना पड़ेगा। जब अनजाने में होने वाले कर्मों पर यह नियम लागू होता है तो जानबूझकर की हुई चोरी, ठगी, बेईमानी, हेराफेरी आदि का फल क्या होगा? कबीर साहब कहते हैं कि हमारे संबंधी हमारी बेईमानी की कमाई खा पीकर अपनी अपनी राह चले जाते हैं और अपने किए कर्मों का लेखा हमें खुद चुकाना पड़ता है।
बहु परपंच कर पर धन ल्यावे, सुत दारा पै आन लुटावे, मन मेरे भूले कपट न कीजे, अंत निबेरा तेरे जी पै लीजे।
सत्संगियों तथा जिज्ञासुओं को अच्छी तरह समझ लेना चाहिए कि कर्म और फल का नियम अटल है और कर्मों का हिसाब रखने वाली शक्ति इतनी होशियार और समर्थ है कि उसे कभी धोखा नहीं दिया जा सकता। कर्मों का हिसाब तो ऋषियों, मुनियों, अवतारों, पैगंबरों तक को चुकाना पड़ता है, साधारण मनुष्य की तो हस्ती ही क्या है। गुरु अर्जुन देव जी कर्मों का हिसाब रखने वाली इस अचूक शक्ति को चतुर बनिए, कसाई आदि के समान निर्दयी बताते हैं। आप कहते हैं कि जीव को उसके पाप कर्मों की सजा के लिए बुरी तरह पीटा जाता है तथा तिलों के समान कोहलू में पीसा जाता है। लोग समझते हैं कि धोखा, हेराफेरी, चोरी, ठगी आदि के द्वारा प्रायः धन हथियाते समय हमें कोई देख या सुन नहीं रहा है, परंतु हम यह नहीं जानते कि वह मालिक हमारे अंदर बैठा हमारे प्रत्येक कार्य, प्रत्येक कर्म और करतूत को निरंतर देख रहा है। उसको हमारे ऐबों और पापों की सजा देने के लिए किसी वकील, दलील या गवाह की जरूरत नहीं है और ना ही उसके फैसले के विरुद्ध किसी प्रकार की आपत्ति और अपील के लिए कोई गुंजाइश है।
पाप करेंदर सर पर मुठ्ठे, अजराइल फड़े फड़ कुठे, दोजक पाए सिरजन हारे, लेखा मंगे बाणियां, संग न कोई पैया बेबा, माल जोबन तन छोड़ वंजेसा, करण करीम न जातो करता, तिल पीड़े ज्यों कहानियां, खुश खुश लैंदा वस्त पराई, वेखे सुने तेरा नाल खुदाई, दुनिया लब पया खात अंदर, अगली गल न जानियां, जम जम मरे मरे फिर जम्मे, बहुत सजाए पया देश लम्मे, जिन कीता तिसे न जानी अंधा, ता दुख सहे पराणियां।
हजूर महाराज चरण सिंह जी अपने सत्संगों में गुरबानी की दो पंक्तियों हर मंदिर ए शरीर है ज्ञान रतन प्रगट होए और हर मंदिर ए जगत है गुरबिन कोर अंधार की व्याख्या करते हुए अक्सर फरमाते थे कि कहने को तो हम भी गुरु साहिबान के जैसे ही कह देते हैं कि परमात्मा हमारे अंदर बैठा है तथा संसार के पत्ते पत्ते कण कण में व्याप्त है, परंतु हम यह नहीं सोचते कि हम कहते क्या हैं और करते क्या हैं। जिस दुकान पर 5 साल का बच्चा बैठा हो, हम वहां से 10 पैसे की पेंसिल उठाने का साहस नहीं कर सकते। जिस खेत की रखवाली के लिए 10 साल का बच्चा खड़ा हो, हम उसमें से 1 खरबूजा तोड़ने का हौसला नहीं करते। परंतु उस परमात्मा को हाजिर नाजिर कहते हुए दुनिया में हम कौन कौन सी ठगी, चोरी, बेईमानी आदि बुरे कर्म नहीं करते। आप फरमाते थे कि नाम की कमाई तो बहुत ऊंची और पवित्र बात है। यदि गुरु साहिब के उपदेश की केवल इतनी सी बात ही हमारे हृदय में बैठ जाए कि वह कुल मालिक सचमुच हमारी हर करतूत को देख रहा है और हमें सचमुच ही अपने हर कर्म का फल भुगतना पड़ता है, तो संसार की हालत ही बदल जाए। क्योंकि यह समझ लेने के बाद हम किसी प्रकार की हिंसा और बेईमानी, अन्याय और अनाचार की ओर जाने का विचार तक ना कर सकेंगे। गुरु अर्जुन देव जी फरमाते हैं,
निकट बुझै सो बुरा क्यों करे,
अर्थात जो व्यक्ति उस परमात्मा को अपने पास निरंतर मौजूद समझता है वह कोई भी अनुचित कार्य नहीं कर सकता। हमें चाहिए कि नाम की कमाई के द्वारा अपने पिछले कर्मों का हिसाब चुकता करने का यत्न करें तथा आगे के लिए हक हलाल की नेक कमाई से तथा ईमानदारी से गुजारा करें, ताकि हमारे कर्मों का बोझ और अधिक ना बढ़े। राधा स्वामी सत्संग ब्यास की पुस्तक हक हलाल की कमाई का समापन, ऑडियो कॉपीराइट 2022। राधा स्वामी सत्संग ब्यास।